आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत और ओमान के बीच आज होंगे महत्वपूर्ण समझौते। युवाओं पर देश को विश्वगुरु बनाने की जिम्मेदारी, कहा राज्यपाल ने। मुख्यमंत्री की घोषणा, सुखद और संपन्न मध्य प्रदेश की कल्पना को सबके सहयोग से साकार करेंगे। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांचवा 2020 क्रिकेट मैच कल से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के दौरे के अंतिम चरण के रूप में कल शाम ओमान के दो दिन के दौरे पर मस्कत पहुंचे। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान की यात्रा पर हैं। आज भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते CPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपने संबोधन में पारंपरिक चिकित्सा में भारत के लंबे योगदान का उल्लेख किया और अनुसंधान गुणवत्ता मानकों तथा वैश्विक सहयोग सुदृढ़ करने के महत्व पर जोर दिया।
भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षक और सूत्रधार आयुष मंत्रालय और WHO के बीच सहयोग 2016 से शुरू हुआ था। इसका एक बड़ा नतीजा 2024 में दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 का लॉन्च था, जो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी बीमारी के कोड को ग्लोबल हेल्थ क्लासिफिकेशन में जोड़ता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने हजारों वर्षों के चिकित्सा ज्ञान को आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ समेकित करने के संगठन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने विज्ञान और परंपरा तथा ज्ञान और जीवन के अनुभवों के बीच सेतु बनाने के महत्व पर बल दिया। सम्मेलन में आयुष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, सेवा, रिग्पा और होम्योपैथी सहित भारत की आयुष चिकित्सा पद्धति के साथ पूरे विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां प्रदर्शित की जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा है कि OTT कंटेंट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. मुरुगन ने कहा कि OTT सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के प्रावधानों के तहत विनियमित होता है। उन्होंने कहा कि आचार नीति संहिता के तहत OTT प्लेटफॉर्मों को कानून द्वारा प्रतिबंधित सामग्री दिखाने से बचना होगा और दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेंट का उम्र के आधार पर वर्गीकरण करना होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन, ग्रामीण की गारंटी, विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में ये अनुपात 90% और 10% का होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता और मुआवजा देना जारी रखेगी। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए सतना के सांसद गणेश सिंह ने कहा कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है।
इस योजना का संक्षिप्त नाम पहले मनरेगा था, अब इसका संक्षिप्त नाम हो गया VBG रामजी, विकसित भारत जी रामजी। 2005 में UPA फर्स्ट ने जब ये मनरेगा का कानून बनाया था, उस समय पर भी मैं था और उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय के लिए हो सकता है कि उपयोगी रहे हों, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं बढ़ती चली गई मुझे लगता है कि जो काम करने में कठिनाई जा रही थी मनरेगा के पुराने कानून में पंचायत राज संस्थाओं को, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार ये मांग हो रही थी और उनकी डिमांड भी घटती जा रही थी। और अभी 25-26 की जो रिपोर्ट है इस वित्त वर्ष, उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 100 दिनों का जो काम मिला है मात्र 7.61% परिवारों को मिला है और इस वजह से इसमें सुधार की जरूरत है।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि युवाओं पर देश को विश्व गुरु बनाने की महती जिम्मेदारी है। युवा अपनी प्रतिभा, लगन और देशभक्ति से संकल्प पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। राज्यपाल श्री पटेल कल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुखद और संपन्न मध्यप्रदेश की कल्पना को बिना भेदभाव के खुले दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हुए साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के समापन अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पक्ष और विपक्ष के साथ नागरिकों के सुझावों और सहयोग के आधार पर प्रदेश के समग्र विकास के लिए कार्य होगा। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुसार मध्यप्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को क्रियान्वित करने के लिए 8 प्रमुख बिंदुओं पर तैयार किए गए दृष्टि पत्र पर कार्य करेगा। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसे संपन्न और सुखद मध्य प्रदेश का निर्माण करना है जहां नवाचार आधारित सतत और समावेशी आर्थिक विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे में संतुलित प्रगति से प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर बेहतर बने। श्री देवड़ा ने कल मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में वित्त विभाग के बारे में चर्चा करते हुए उक्त आशय के विचार प्रकट किए। उन्होंने औद्योगिक विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए नई और उद्योग अनुकूल नीतियां लागू की गई हैं। ग्वालियर में आयोजित हो रहे 101वें तानसेन समारोह के तीसरे दिन की सांध्यकालीन सभा का शुभारंभ परंपरा के अनुसार ध्रुपद गायन से हुआ। शारदा नाथ मंदिर संगीत महाविद्यालय ग्वालियर के विद्यार्थियों ने ध्रुपद की प्रस्तुति दी। इसके बाद मंच पर विख्यात शास्त्रीय गायक और मध्यप्रदेश शासन के राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान से अलंकृत संजीव अभ्यंकर पुणे ने अपना गायन प्रस्तुत किया। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सबसे कम तापमान मंदसौर में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बैतूल, भोपाल, दतिया, गुना, खरगोन, उज्जैन, इंदौर सहित 20 से अधिक जिलों में शीतलहर का अनुमान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल लखनऊ में चौथा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच घने कोहरे के कारण रद्द हो गया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। पांचवा और अंतिम मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगर मालवा जिले में अग्नि और विस्फोट दुर्घटना से बचाव तकनीक विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागृह में किया गया। खंडवा में जल संरक्षण को लेकर मिशन अमृत संचय अभियान के तहत किशोर कुमार सभागृह में इंजीनियर्स की कार्यशाला आयोजित की गई। मंदसौर शहर के मयूर विहार कॉलोनी में कल एक तेंदुआ निर्माणाधीन मकान में घुस गया, जिसे मंदसौर और गांधी सागर वन विभाग की टीम ने ट्रंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया। निंडौरी जिले में कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण वितरण कार्यक्रम बजाक ब्लॉक में आयोजित किया गया। इंदौर जिले में कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत कारुण्य प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।